हरे कृष्णा। जो लोग भक्ति में आ चुके हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा अंत को है जो धाम में हो जाए, क्योंकि धाम में शरीर छोड़ने से भगवत की, भगवान की धाम की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद भी अपने बूढ़े अवस्था में यहाँ पर आए थे और एकांत में रहे 3 साल वो, अचानक चले गए यहाँ से। तो ब्रजवासी लोगों ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और कुछ लोगों ने टीका भी किया उनके ऊपर। टीका मतलब क्या, व्हाट यू कॉल दैट, हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, टीका मतलब टिप्पणी यानी कमेंट्री, बट वो मराठी में टीका मतलब क्रिटिसिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा उनके लिए ऐसा का कैसे साधु कैसा है ये, बुढ़ापे की उम्र में इतना संन्यास लेकर सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गया, तो उसको यही रहना चाहिए। ये तो जा रहे हैं, उल्टे जा कहाँ रहे, ऐसे नहीं कि भाई भारत में कहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं, विदेश जा रहे हैं, 7 समुंदर पार करके ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पर भगवान तो दूर, भगवान का नाम भी किसको पता नहीं है, जहाँ पर केवल माया माया और माया और भोग और भोग और भोग भरा हुआ है, ऐसी जगह जा रहे हैं। मतलब एक तरह से पागल ही व्यक्ति है ये। भगवान की याद करने के लिए जो आवश्यक है वो जगह छोड़कर वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर भगवान की याद करने का कोई गुंजाइश नहीं है। साधारण स्तर पर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर कोई भगवान का भजन करने का कोई साधन नहीं है, मुश्किल है बहुत। ऐसे बहुत लोगों ने उनको ताने दिए, जो लोग यहाँ के लोग थे, ब्रजवासी थे, गोसाई थे, भक्त थे यहाँ के, जो बाहर से आकर यहाँ बस गए थे, क्योंकि ब्रज का भाव ही है कि अंतिम क्षण में यहाँ पर आना है और भगवान का नाम ध्यान रख के भगवत धाम जाना है। और प्रभुपाद जी उसके बाद 12 वर्ष घूमते रहे, बीच में कभी कभी आए यहाँ मंदिर बनाने के लिए, बहुत टाइम आए, लेकिन जब लौट के बाद में आए फाइनल 1977 में, तो यही उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब जिन लोगों ने उन पर ताने दिए थे वो सब लोगों ने उनका सराहना किया, सब ने उनकी तारीफ की, गौरव किया उनका, ये सच्चे ब्रजवासी हैं। तब उनको समझ में आया कि वो चले क्यों गए थे। वो चले इसलिए गए थे कि श्री वृंदावन धाम का जो चेतना है, जो भाव है, वो उनको उन लोगों को देना था जिनका उनको दूर से भी कोई संबंध नहीं था। ऐसे लोगों को वो कृष्ण भावना देने के लिए वो यहाँ से इतना कष्ट उठाकर विदेश चले गए थे। प्रभुपाद जी आज मैं सुबह कल प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गुड मैनेजर इज दैट पर्सन हु गेट्स अदर्स डू थिंग्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। उन्होंने कहा कि मैनेजर अच्छा वो होता है जो दूसरों से अच्छे काम करवा लेता है कुशलता से, और मैं उन अच्छे मैनेजर में से एक था, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं आया, मतलब विदेश की बात कर रहे हैं, और मैं 40 रुपये लेके आया था, उसमें से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया उसमें से 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया, लेकिन इतना सारा माहौल खड़ा कर दिया यहाँ पर, आप लोगों से करवाया। ऐसे वो हंसते हंसते बोल रहे थे। एक्चुअली उन्होंने कितनी बड़ी कृपा की है ना। तो लोगों को बाद में फिर ये समझ में आया, ब्रजवासी लोगों को, कि ये चले गए थे क्योंकि उनका वो भाव उनको देना था, और उनको ब्रिज का, यहाँ से ब्रिज हृदय में लेकर गए वो, और उनको ब्रिज बांटा उन्होंने, और ब्रिज उनके हृदय में बसाया, और वो जो हृदय में बसे हुए लोग हैं जिन्होंने ब्रिज को हृदय में बसाया, फिर वो यहाँ पर आए, फिर उनको देखकर यहाँ के लोग भक्त बन गए। है ना, अजीब गणित, बहुत अजीब है ना ये उन्होंने उनका जो उनको जो शिष्य थे आचार्य प्रभाकर, वो कहते थे कि इन्होंने यहाँ पर बहुत प्रचार किया, लेकिन यहाँ के लोग तैयार नहीं थे उसको लेने के लिए। तो आचार्य प्रभाकर कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर अभी मुझे कुछ करके लाभ नहीं होने वाला है, मुझे विदेश जाना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा, यहाँ पर अभी और मेहनत करके कुछ नहीं होने वाला है। और उनकी गुरु जी की आज्ञा भी यही थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उनके गुरु जी की आज्ञा विदेश जाने की थी, इसलिए उनको यहाँ पर यश मिलना असंभव था उसके बिना। और जैसे ही वो लौट कर आ गए, यहां पर उनको अपार यश मिला। तो सब लोगों को समझना जरूरी है कि गुरुजी की आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी की इच्छा से अपनी इच्छा को एक रूप करना, ये भक्त के लिए बहुत जरूरी चीज है। और जब गुरुजी की आज्ञा से हमारी इच्छा को हम एक रूप करते हैं तो ब्रज हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। ये उसका विशेष रहस्य है। ब्रज में रहने पर भी शायद हम ब्रज से बहुत दूर रह सकते हैं, और बहुत ब्रज से दूर रहकर भी ब्रज में रह सकते हैं, दोनों मुमकिन हैं। और ब्रज में रहकर ब्रज में रहना ये बड़ी भाग्य की बात है। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? नंबर वन मैंने बताया कि ब्रज में रहकर भी आप ब्रज के बाहर रह सकते हो। नंबर टू मैंने बताया कि ब्रज के बाहर रहकर भी आप ब्रज में रह सकते हो। और नंबर तीन बताया कि ब्रज में रहकर अगर ब्रज में रहते हो तो ये बड़े भाग्य की बात है। यही जीवन का रहस्य है एक्चुअली। और सब लोग शरीर से ब्रज में रह सकते नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने वो कला लोगों को सिखाई स्वयं के उदाहरण से, कि यहां से वो चले गए लेकिन ब्रज उनके हृदय में था, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में था, इसलिए जहां जहां गए लोगों को ब्रज का और कृष्ण प्रेम का अनुभव हुआ। ये बहुत बड़ी देन है और बहुत बड़ी सेवा है प्रभुपाद जी की। तो उन्होंने अपने शिष्यों के मन में ये प्रेरणा उस समय से जागरूक करके रखी थी कि ब्रज में शरीर छोड़ने से भगवत धाम प्राप्त होता है। तो उनके कई शिष्य तमन्ना करते हैं कि इस्कॉन के जितने सदस्य हैं वो सोचते हैं कि अंतिम क्षण में ब्रज में आ जाएं। तो उसी तरह से बहुत साल प्रभुपाद जी की सेवा करने के बाद में गुणग्राही महाराज अभी वृंदावन में आए हैं। अभी शायद उनके जीवन में 3, 4, 5, 6 महीने अधिक से अधिक हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। कार्तिक जरूर मिलेगा उनको, ऐसे उम्मीद है हमारी। अभी तो चतुर्मास शुरू हो गया ना, तो 3 महीने बाद चौथा महीना शुरू होगा, तो कार्तिक महीना मिलेगा उनको, मोस्टली मिलेगा। हम भी प्रार्थना करते मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो आदमी ब्रज में आ गया है बाहर न जाने के निश्चय से, उसके लिए कभी भी कुछ भी हुआ तो भी अच्छा ही है। ब्रज में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि ब्रज में बाहर जब हम रहते हैं तो हमको लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, आई एम द कंट्रोलर, मैं सब तय करता हूँ क्या होना है क्या नहीं करना है। लेकिन ब्रज में आने के बाद में भी अगर हम सोचते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, तो हम लोग ब्रज के बाहर रहे हैं, ब्रज के अंदर नहीं है। ब्रज के अंदर रह के अगर सोचेंगे कि मैं नियंत्रक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, तो सबसे बड़ा भ्रम है वो, इल्यूजन। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द बॉस, मेरे कहने पर यहाँ पर बातें होती हैं। और ब्रज में आने के बाद में अगर आपको ये अनुभूति होती है कि कृष्ण भगवान नियंत्रक हैं, वो कंट्रोलर हैं, तो आपका ब्रज का वास शुरू हो जाता है। और अगर हम प्रामाणिक हैं तो भगवान हमें वो भावना देते हैं मन में कि यहाँ पर वो मालिक हैं। ऐसा भावना मन में आना ये उनकी कृपा का लक्षण है। जिन पर वो कृपा करते हैं उनको बता देते हैं कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, और जिसको ये पता चलता है वो भगवान की कृपा का पात्र रहता है। ये सब बातें बहुत गहरा विचार करने जैसी बातें हैं। आपके लिए विशेष करके ये बात जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग अभी ब्रज में रहते हो, है ना? और ब्रज में अगर शरीर आपका आ ही चुका है तो क्यों ना हम चेतना से भी ब्रज में रहे। एक सामान्य विचार है ना, बहुत साधारण विचार है कि अगर शरीर से आ गए तो मन से और आत्मा से क्यों नहीं, पूरा लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि ब्रज का निवास प्राप्त होना ये भी बहुत परम भाग्य की बात है। या तो हमारे बहुत पुराने बड़े बड़े कर्म हैं, हमारे अच्छे अच्छे कर्म हैं, जिसकी वजह से हमको ब्रज में या तो जन्म मिला है, या तो लंबा वास मिला है, या तो मेहमान के रूप में आने को मिला है हमारे जैसे लोगों को। ये तीनों के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है। और एक भाग्य हमारे अच्छे कर्मों का है, लेकिन एक श्योर शॉट कारण इसका यह है कि हमने, भगवान ने हम पर कृपा किया है, और भक्तों के लिए ये सोचना अच्छा है कि मेरे कर्म अच्छे हैं, ये सोचने के बजाय भगवान की कृपा है कि हम यहाँ पर हैं, ये सोचना अच्छा है। ये भगवान को भी अच्छा लगेगा, नम्रता से कोई बोलेगा कि मैं तो इसके योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर निवास दिया है आपके धाम में, कितनी बड़ी बात है। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बहुत लोग ब्रज में शरीर छोड़ने को आते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है और वो ब्रज के बाहर जाके मर जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सब कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। वो अच्युत गोविंद दास था ना, बच्चा जो आया था यहाँ पर, वो तो यहाँ मुंबई से निकला था शरीर छोड़ने के लिए और यहाँ पर पहुँच भी गया था वो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अस्वस्थ हो गया, वो रेस्टलेस हो गया एकदम, बोला मुझे जाना है। 8 दिन में चला गया वापस और बॉम्बे में जाके शरीर छोड़ा। अभी भाग्यवान था वो, कम से कम भक्ति विधान में शरीर छोड़ा, वहाँ पर कीर्तन हुआ, सब कुछ हो गया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आना, यहाँ पर रहना और यहाँ पर मरना, ये किसमें से कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी यहाँ पर विराजते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। उनके साथ में रहना, उनके धाम में मरना, तो गाना तो आसान है बहुत, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, अच्छे अच्छे गजल गा सकते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना और वैसे सोचना, आत्मा से सोचना बहुत कठिन बात है। इसलिए हम सब लोग को सबको निश्चय करना चाहिए कि हम लोग को केवल शरीर से रहना नहीं है यहाँ पर, मन कहीं और, भावना कहीं और, इच्छा कहीं और रख के यहाँ पर निवास करना नव निवास न करने के बराबर है। इसलिए हमारा शरीर भी यहाँ पर होना चाहिए, भावना भी यहाँ पर होना चाहिए, लगन भी यहाँ पर होनी चाहिए, आसक्ति भी यहाँ की होनी चाहिए, तो हमारा जीवन बहुत धन्य है। फिर ऐसे चेतना वाले लोगों को अभी दुख नहीं होता है। और ब्रज हमारी बहुत कड़ी परीक्षा भी लेता है, कठोर परीक्षा लेता है, तो रहता है बस हो गया अभी जाना चाहिए यहाँ से, आई कांट स्टे हियर एनी मोर, ऐसा कई बार लगेगा आपको। लेकिन फिर भी जो ब्रज के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ब्रज के विषय में महिमा के बारे में सोचा है, वो सोचते हैं कि जो भी यहाँ हो अच्छा है। तृणावर्त आया, बाप रे इधर क्यों रहना है ब्रज में, इधर पास में मथुरा नगरी के पास क्यों रहना है, इधर देखो कितना बड़ा तूफान आ रहा है, सबके घर उड़ गए, गौशाला उड़ गई, गाय किधर है पता नहीं, कृष्ण कहाँ गायब हो गए मालूम नहीं, कृष्ण भी नहीं है जिनके लिए यहाँ रह रहे हैं, जिनके प्रेम से यहाँ पर बसे हुए हैं वो भी गायब, कैसा चीज है ये, भागो यहाँ से। अरिष्टासुर आया तो भी ऐसा ही, धरणी कम, भूकंप, तूफान, आंधी, एक साथ सब कुछ चल रहा है, तो भूकंप हो रहा है, सांस ले रहे तो तूफान आ रहा है, पूछ से बादलों को यहाँ भटका रहा है, स्त्रियों का गर्भपात हो रहा है, आप बोलेंगे ऐसी जगह क्यों रहना है, इतना भयंकर आतंक आए दिन होते रहता है यहाँ पर, क्यों रहना है यहाँ पर। लेकिन ऐसा कभी आपने पढ़ा क्या, क्या सुना कभी कि ये सब देखकर एक दो बार देखा फिर कुछ लोग चले गए यहाँ से, परेशान हो गए, वो नंद बाबा को बोला अभी हम नहीं रहेंगे आपके साथ, यहाँ तो बहुत परेशानी है, ऐसा कभी गया सुना क्या आपने कभी, कभी भी नहीं। क्योंकि जिनकी श्रद्धा भगवान में होती है और जिनकी श्रद्धा भगवान के धाम में होती है, वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, वो जानते हैं कि भगवान के धाम में और भगवान के होते हुए वही होता है जो हमारे अच्छे के लिए होता है, कभी बुरा नहीं होता है, और उससे विचलित भी नहीं होते हो, उस तरह से उनको कोई संकट नहीं रहता है। संकट तो आते हैं यहाँ पर, लेकिन संकट के स्तर पर उसको स्वीकार नहीं करते वो कि ये संकट है, वही घटनाएं जो यहाँ पर होती है वो भगवान के प्रति और आसक्ति और प्रेम निर्माण करने के लिए मदद करती है। जब देखते हैं कि अरे गायब हो गया बच्चा, फिर कुछ देर देखते तो क्या हुआ, एक भयंकर राक्षस जो है आकाश से आकर जमीन पर धड़ाड़ करके गिर जाता है और उसके कंधे पर नन्हे से कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ उनको, कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखते हैं वही छोटा सा बालक जो है वो इतने बड़े बैल को उठाकर, पैर से उठाकर गोल गोल घुमा रहा है और ऐसा मार देता है कि एक साथ में वो गोबर और मूत्र जो है उसका निकल जाता है, प्राण भी निकल जाते हैं उसका, अद्भुत चीज है कि नहीं, एक तरह से इतना आतंक हो रहा है, एक तरह से इतना आनंद आ रहा है, अरे बाप रे, देखो नन्ना सा बालक जो है वो हमको बचा रहा है, इतनी तूफान आंधी हो रही है, क्या होगा, पूरा ब्रज बह के जा रहा है, उतने में तो इतना सा बालक जो है वो हरि बोल गिरिराज को उठा लेता है, 7 दिन 7 रात, कितना आनंद आया होगा उनको देख के, सोचो अभी अभी इतने भयंकर आंधी तूफान में से वो मरने के भय से व्याप्त थे, इतनी ठंड थी अभी, अचानक देखते तो क्या श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज को उठा लिया, फिर कोई ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई आंधी है, ना कोई तूफान है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई भय जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आनंद ही आनंद है, आत्मा को, मन को, भावना को, शरीर को, सब जगह से आनंद, ना भूख ना प्यास ना नींद, सब कुछ गायब। तो ये जब होता है ना तो उसका अनुभव प्राप्त करके अगले आने वाले संकट को भी वो तैयार रहते हैं, ये ब्रजवासी है, जो हर उसके ऊपर होने वाला जो आतंक है उसको भगवान की कृपा के रूप में देखता है, उसके बाद भगवान को उससे खुद को बचाते हुए देखता है, भगवान बचा रहे हैं ये भी देखता है, और फिर अगली बार जब कुछ होता है तभी वो विचलित नहीं होता है, उन्हीं को पुकारता है। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कभी आतंक भी नहीं होता है, आनंद ही आनंद होता है, जैसे अभी चल रहा है, अभी के मौसम में कोई राक्षस नहीं आ रहा है, अभी के मौसम में तो भगवान झूला झूल रहे हैं प्रेम से, कोई संकट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई राक्षस नहीं आ रहा है। अभी देखा कि आपने ऐसा झूला झूल रहे, अचानक कोई राक्षस आया तो भगवान ने बोला टाइम प्लीज, झूला से उतर गए, उसको मारा, फिर झूले पे बैठ गए, ऐसा कभी हुआ है क्या? भगवान जो उनकी अंतरंग लीला होती है ना उसके अंदर राक्षसों को आने को नहीं देते, जब गौचारण करते हैं जो घूमते हैं वही राक्षस आते हैं, बरसाना में नंदगांव में राक्षस नहीं आते। तो ये जो झूला का उत्सव है बहुत ही सुंदर उत्सव है, और आप लोग ज़्यादा जानते हैं मुझसे इस बारे में, वो व्यास पूर्णिमा है ना तब से लेकर 1 महीना नंदगांव के ठाकुर झूला झूलते हैं, 1 मंथ, लेकिन वहाँ पर राधा रानी नहीं है, कृष्ण बलराम दोनों झूलते हैं, मैया पापा और बाकी सब सखियाँ उनको झुलाते हैं, रोज मंदिर के बाहर आते हैं, उनका पूरा झूला बना हुआ है, वहाँ पर झूलते हैं। बाकी बिहारी कब से झूलते हैं? हरियाली तीज से झूलते हैं, वो जो कल का दिन है, कल का है ना, परसों का 5 तारीख को हरियाली तीज है। हरियाली तीज में मंदिर में सब श्रृंगार हरे रंग का होता है, पुजारी भी हरी धोती पहनते हैं, हरा दुपट्टा पहनते हैं, हरा कुर्ता पहनते हैं, श्रृंगार का पर्दा भी हरे रंग का होता है, फूल भी अधिकतर हरे रंग के होते हैं, डेकोरेशन का जो होता है ना कलर वो भी हरे रंग का होता है, हर चीज़ हरे रंग की होती है, क्योंकि भगवान के द्वारा वर्षा करने से सब जगह हरियाली छा जाती है। और हरियाली तीज का महात्म्य ऐसा है कि सावन जब आता है ना तो जो नई नई ब्याही दुल्हन है जो अपने ससुराल गई है उनको मायके बुलाया जाता है, और सब मायके जो आती हैं शादीशुदा दुल्हनें, मतलब लड़कियां जो उस गांव की लड़कियां हैं जो कई किसी गांव पर ब्याही हुई है, तो उनको उस महीने में मायके बुलाया जाता है, और मायके बुलाने के बाद में या तो मैया या तो बहन या तो भाई उनको झुलाते हैं झूले पे बिठाकर नई नई दुल्हन को। तो इस समय नंदगांव में और बाहर बहुत जगह पर जितनी भी गोपियां ब्याह कर चली गई है बरसाने से, उनको सब को उनके भाई जो है वो आकर ले गए हैं, लेकिन राधा रानी को लेने के लिए कोई नहीं आया है। तो राधा रानी बड़े प्रेम से गीत गाती है कि क्या मुझे भैया भूल गया, क्या मुझे मैया भूल गई, बाबा भूल गए, सबके सब भैया आकर उनको ले गए अपने अपने घर, लेकिन मेरे घर से कोई नहीं आया। ऐसा करके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर तीसरे दिन नंदगांव की ओर बरसाने से एक रथ निकलता है, श्रीदामा भैया जो है वो रथ लेकर नंदगांव आते हैं, तो राधा रानी बड़ी खुश हो जाती है। फिर राधा रानी को उनके भैया श्रीदामा रथ में बिठाकर बरसाना ले जाते हैं, और बरसाने में फिर उनको सब सखियाँ और भैया सब मिलकर झुलाते हैं। ये लीला हरियाली तीज की लीला है, बहुत सुंदर लीला है प्रेम से। और हरियाली तीज के दिन राधा रानी जो कि मेन जो विग्रह हैं बरसाने के, वो नीचे आ जाते हैं। संगमरमर का मंदिर है ना नीचे, देखा है ना आपने, कितने लोगों ने देखा है? मंदिर ऊपर है और नीचे एक एक सीढ़ी उतरने के बाद नीचे संगमरमर का सफ़ेद रंग का मंदिर है। वहाँ पर राधा रानी साल में 3 बार आती है, एक बार राधाअष्टमी में आती है, एक बार होली में आती है और एक बार हरियाली तीज में आती है। होली नहीं, राधाअष्टमी नहीं, होली, हरियाली तीज और राधाअष्टमी, ऐसे सिक्वेंस है उसका। और उसका और महत्व यह है कि जब जो आती है, जब भी नीचे आती है, तभी ब्राह्मणों के साथ बाकी जाति के लोग भी उनकी पूजा कर सकते हैं। चाहे गुजर हो, चाहे भंगी हो, चाहे कुछ कुछ भी हो, जाटव हो, किसी भी जाति के जो आम तौर पे भगवान की सेवा करने का उनको अधिकार नहीं दिया है, वो भी सब लोग ठाकुर जी की, राधा रानी की सेवा करते हैं। और झूले की तो बहुत लीलाएँ हैं, लेकिन विशेष उसका भाव हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि जब भगवान की ये बहुत ही अनोखी लीलाएँ होती है, तो हमें उनके दास के रूप में ये श्रवण करना चाहिए, उनके जैसा बनकर नहीं सुनना चाहिए, एज अ पार्टिसिपेंट। हाँ, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ में, उनके सेवक के रूप में, जैसे सेवक मालक का गौरव सुनता है, मालिक का, वैसे इन कथाओं को श्रवण करना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाए, वन शुड हियर दीज पास्ट टाइम्स विद ग्रेट ऑ एंड रेवरेंस इन माइंड फॉर द लॉर्ड एंड हिज पास्ट टाइम्स। क्योंकि कभी कभी जब हम भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हम तो इतने योग्य हैं कि हम उसके ही बराबर हैं, उनके जितने लोग लीला में हैं उनके उनमें से हम ही एक हैं, ऐसा हमको लगने लगता है कुछ देर के बाद में। वो एक माया का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर, इसलिए आचार्य हमको सावधान करते हैं कि जब भगवान की उच्चतम अंतरंग लीला हम श्रवण करते हैं, तो केवल एक निम्न दास के रूप में ही सीधा, जैसे कोई देश का कोई नेता है उसके बारे में हम सुन रहे हैं, तो हम ये समझते नहीं कि मैं भी देश का नेता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते ना हम लोग। मैं तो एकदम तुच्छ नागरिक हूँ, कोई तो भी, कोई उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और वो देश का नेता है, उसका गौरव सुन रहे हैं हम। जैसे आज हम भगत सिंह का गौरव सुनते हैं कभी, या सुभाष चंद्र बोस का गौरव सुनते हैं, तो किसी भी स्तर पर हम उनके बराबर नहीं समझते अपने आप को, हम बहुत दूर हैं उनसे और वो बड़े महान हैं समझते। तो इस तरह से भगवान की जो ये लीलाएँ हैं, झूलन लीला है, फिर होली की लीला है, और वही रास लीला है, ये केवल और कोई चटपटी लीला है, हम जो कोई मक्खन चोरी की लीला है, बहुत उत्कट लीला है, वो सब लीलाएँ हमको बड़े आदर और सम्मान के साथ उस भाव से सुनना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ठीक, और उनको उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, हो सके तो उस लीला में उसको संपन्न कराने में उनकी सेवा करना जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरी बात यह है कि भगवान जब लीला करते हैं राधा रानी से, तो अभी मैं कोई एक संक्षेप में लीला सुनाता हूँ कि दूसरी बात क्या है समझने के लिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि किसी भी स्तर पर हमको उनका भोग लेने के लिए लीला सुनना नहीं चाहिए। वाह मज़ा आ रहा है बड़ा सुनने के लिए, और सुना मुझे और एक सुना दो, एक और सुना दो, आनंद आ रहा है, वाह वाह क्या बात है। तो यही प्रेम और जो भौतिक आसक्ति होती है ना, उसमें अंतर है। प्रेम जब होता है तो हम जिस पर प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और जब भौतिक आसक्ति होती है तो जिस पर प्रेम करते हैं उसमें से मुझे क्या मिलेगा वो देखते रहते हैं। अगर मेरी पत्नी सुंदर है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा उसमें, मुझे आनंद आएगा बहुत। स्वार्थ अगर जिस रिश्ते में, प्रेम के भी हो, उसमें अगर स्वार्थ अगर केंद्र स्थान में है तो उससे हमारा पतन होता है, प्रेम करने बाद भी पतन होता है, क्योंकि हम हर समय उस समय से उसमें से मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में सोचते रहते हैं। और प्रेम के अंदर ये भाव है कि प्रेम जब करते हैं तो प्रेम में, प्रेम करते समय मुझे क्या मिलेगा, मेरी क्या पूर्ति होगी, वो हम नहीं सोचते। प्रेम एक पारमार्थिक चीज़ है, दूसरे के लिए सोचते हैं हम। जैसे मैया जो होती है वो बालक के बारे में सोचती है कि उसको क्या मिलेगा, उसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण होते हुए मुझे कष्ट होगा तो चलेगा, लेकिन उसका कल्याण होना चाहिए। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, बोर हो गया तो अपने पति के हाथ में देते हैं, लो भाई ये बैटन तुम संभालो, मैं दिन भर से देख रही हूँ उसको, अभी तुम आए हो, ये लो संभालो उसको। फिर कुछ देर बाद में संभालते संभालते पॉटी कर दिया तो बोला ये लो तुम, अभी तुम संभालो इसको, इसका सब पॉटी साफ करो। फिर तब संभालने के बाद बोले कि अभी पॉटी साफ हो गया, अभी ये तुम संभालो उसको। मतलब क्या है, वो बच्चा सोचता है कि मैं फुटबॉल हूँ कि मैं क्या हूँ, बालक हूँ। यहाँ से वहाँ मुझे इस गोल से उस गोल में डाला जा रहा है, क्योंकि अभी वो बालक चट्टी पेशाब भी नहीं कर रहा है, रो भी नहीं कर रहा है, उल्टी भी नहीं कर रहा है, परेशान भी नहीं कर रहा है, और हंस रहा है, कुछ कुछ तोतले तोतले बोल बोल रहा है। तो सबको वो बालक चाहिए, और वो तोतले तोतले बोल बोल रहा है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, अचानक सुसु कर लिया तो तुरंत वापस कर देते उसको। क्या सोच रहा है आदमी, मुझे क्या मिलेगा उसके अंदर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है तो मैं खेल रहा हूँ उसके साथ, टट्टी का खुशबू आ गई तो वापस दे रहे हैं। लेकिन विकट से विकट समय पर माता जो होती है वो कभी बालक को ऐसा रिजेक्ट नहीं करती है, लेकिन आजकल की माताएं करती हैं, पति का वेट करते, कभी काम पे से आएगा और वो उसके हाथ में बैटन समा देगा उसके रिले सर्विस बोलते हैं उसको। लेकिन ठाकुर जी जो लीला करते हैं तो एक लीला ऐसी है कि उनके झूला में लगी शर्य, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन कि किसका झूला झुलाएगा तभी ऊपर ऊपर जाएगा बहुत। तो राधा रानी ऐसा झूल रही है कि झूला ऊपर 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 जा रहा है, अगले पेड़ के ऊंची डालियों तक उसका पैर जाके लग रहा है, और ठाकुर जी हल्का हल्का झूल रहे हैं। तो सखियां उनको बोल रही है, अरे ठाकुर जी झूलो आप तो हार जाओगे, वो देखो श्री जी कितना अच्छा झूल रही है, देखो उनका पैर कहाँ तक पहुँच रहा है। ठाकुर जी तो कुछ सखियाँ बोलते कि हम आपको झुलाए क्या, उनके कंपटीशन में हम आपको झुला सकते हैं, उसके भी ऊपर डाल सकते हैं। बोला नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ठाकुर जी निहार रहे हैं कि जब राधा रानी झूल रही है तो उनके कान के कुंडल भी झूल रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं। जब कान के कुंडल झूल रहे हैं तो उनका जो प्रकाश है वो भी उनके गालों पर झूल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं उसको, वो बड़े ध्यान से और गौर से देख रहे हैं। फिर जब वो पिछली ओर जाती है, पीछे ओर, तो उनकी माला जो है वो झूलती है, उनके शरीर से अलग होकर झूल रही है। अब जो ऊपर जाती है तो माला उनके सीने में लगती है, एकदम सीने में चिपक के लग रही है, फिर वही छूटती है और फिर ऊपर जाने का वापस झूलती है माला। वैसे ही उनके गले के जो मणि, मोती के मणि अलंकार जो भी है, जो भी कमर में लगे हुए हैं, वही ऊपर जाने के बाद उनको शरीर में चिपक जाते हैं और पीछे जाने पर सब झूलने लगते हैं। और ठाकुर जी ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं वो कान का कुंडल हूँ, मैं वो उनके गले का हार हूँ, मैं वो उनके कमर का अलंकार हूँ, जो कुछ समय झूल रहा है और कुछ समय उनके बदन से एक रूप हो रहा है। तो फिर बहुत देर के बाद में ये उस दिन की लीला समाप्त हो जाती है। तो सब सखियाँ ठाकुर जी के पास आती है और वो कहती हैं, अरे कन्हैया तुम तो हार गए, श्री जी जीत गई। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके कुंडल के साथ झूल रहा था, मैं उनकी माला के साथ झूल रहा था, मैं उनके कमर के अलंकार के साथ झूल रहा था, और कुछ समय झूल रहा था, कुछ समय उनसे चिपका हुआ था, बताओ कौन जीत गया, मैं जीत गया कि वो जीत गई। तो ठाकुर जी लीला करते हैं तो वो हारने के लिए लीला करते हैं, वो हारने में अपनी जीत मानते हैं, हारने में ही अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं। होली में भी ऐसा है, वो आते हैं ना होली में तो फगुआ वगुआ लेके आते हैं, वो फगुआ कभी लेके आते हैं, भगवा जब हारते तो देते ना, तो वो रेडी फगुआ लेके ही आते हैं, उनको हार के फगुआ बांटना ही है सबको, उसको मिठाई अलंकार वस्त्र सब बांटना है उनको। तो संत लोग बताते हैं कि ब्रज की लीला जो है वो भक्तों के सामने हारने वाली लीला है, और प्रयत्न पूर्वक इच्छा से भगवान अपने भक्तों के सामने अपने आप को परास्त कर देते हैं, उसी में अपने आप को धन्य मानते हैं। वो झूले का खेल जीतने के लिए वहाँ आते नहीं है, वो होली का खेल जीतने के लिए आते नहीं है, वो हारने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के सामने उनके चरणों में गिड़गिड़ाने के लिए आते हैं हार कर। ये दूसरी बात है, पहली बात कहते आपको क्या बताई मैंने, आदर और सम्मान के साथ उसको सुनना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी उस लीला को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि बड़ा आनंद आ रहा है भाई, सुनते जाऊँ। उन लीला की सेवा करने का मौका मिलने का प्रयास करना चाहिए। और स्वयं ठाकुर जी जब इन लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों के सामने हारना चाहते हैं, तो हमें भी भक्तों के सामने हारने को सीखना चाहिए। जब भक्तों के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, अपने आप को न्यून मानते हैं, पराजित मानते हैं, तो भक्त का जीवन धन्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।